आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज के हमारे इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के इंग्लिश किताब का चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्सेस का मतलब है किसी भी चीज की झलक लेना या फिर ओवरऑल ऐसे व्यू लेना, जैसे कि फ्लैश लेना। ओके, आप इसको कह सकते हो क्षण ज्योति। आप प्योर हिंदी में अगर आप बात करें तो क्षण ज्योति जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। ओके, तो बेसिकली हम इस लेसन में, पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो भी चीजें हुई हैं, हमारे यानी कि हमारे भारत के पूरे पास में जो चीजें हुई हैं 1857 तक जो भी कुछ चीजें हुई हैं, जैसे कि वॉर्स हुए हैं, बड़े बड़े आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस पर्टिकुलर लेसन में। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बहुत ज्यादा ये चैप्टर पसंद आएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से ये पूरा चैप्टर डिवाइड हुआ है। तो बच्चे, ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो 1757 से लेके 1849 तक इसकी एक कहानी है इसमें, फिर 1765 से लेकर 1836 तक एक कहानी है, फिर राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताया गया है, उसके बाद उत्पीड़न होता था जो समाज में, यानी कि जब ब्रिटिश थे उनके काल में जब उत्पीड़न होता था, किस किस प्रकार से हमारे जो भारत के जो रहवासी है उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे उसके बारे में है, फिर बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के राज्य में, ब्रिटिशों के राज्य में जिस प्रकार से असंतोष था पूरे समाज में उसके बारे में है, फिर जिस प्रकार की चिंगारियां थी, मतलब कि 1857 का जो वॉर था उसके बारे में, किस प्रकार से वो वॉर शुरू हुआ, वो लड़ाई शुरू हुई उसके बारे में है, फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में, मेरठ में जो हुआ था उसके बारे में लिखा गया है, और उसके बाद आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, मतलब जिसको हमारे हिस्ट्री में कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी 1857 में, 1857 में, उसके बारे में है। ओके, तो ये जो पूरा चैप्टर है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। मैं आपको हम पहले क्या करेंगे, पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद बीच बीच में मैं आपको इस पूरे चैप्टर की समरी बताऊंगी, हम लोग मतलब जानेंगे इस समरी का पूरे। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे आपके किताब में आपकी जो पहली पेज है आपके लेसन में, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं, वो एक सीन है यहाँ पे और बहुत ही ये फेमस सीन था जहाँ पे ए मेरे वतन के लोगो लता मंगेशकर जी ने गाया था, और हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे चाचा जी जिनको हम कहते हैं पंडित नेहरू, वो तक रोए थे इनकी इनका ये गाना सुन के। तो इंग्लिश में इसको लिरिक्स है इसकी, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स As you recall the sacrifices of the Indian martyrs, यानी कि हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, मतलब कि 1857 से ही नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि हम कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई जो कि 1857 में जिनको एक हीरोइन माना जाता है उस काल का, तो उनसे लेके उससे पहले भी बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत लोग ऐसे थे जिनके हमें नाम तक नहीं पता, तो इनके बारे में ये कहानी है। ओके, तो शुरू करते हैं। हियर आर सम ऑफ द पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। मतलब कि यहाँ पे आपको बबल्स की, मतलब स्पीच बबल्स दिए गए हैं, यानी कि कौन कौन क्या क्या बोलता है, आपको समझाने के लिए ब्रीफली कि क्या पूरा सीन था, किस प्रकार से पूरे लोगों की थिंकिंग थी उस टाइम के, वो सब है। ओके, तो सबसे पहला जो पड़ाव आता है वो कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849 तक। मैं आपको इसके पीछे की पूरी जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, बट पहले हम क्या करेंगे, जिस प्रकार की लैंग्वेज हमारी किताब में यूज की गई है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम अच्छे से इस प्रकार की इसका मीनिंग समझेंगे। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसका मीनिंग समझाऊंगी। हिस्ट्री को हम आज एक स्टोरी की तरह सुनेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। यहाँ पे हमें भारत का, हमारे उस टाइम के भारत का नक्शा दिया गया है, पिंक में जो मार्क की गई है वो ब्रिटिश टेरिटरी थी उस जमाने की, और बाकी की पूरी जो येलो टेरिटरी है वो पूरा भारत था। ठीक है, सो शुरू करते हैं। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन डे. द फार सींग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग. थैंक गॉड देर इज पीस इन द कंट्री नाउ. No more wars and looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. How Indians used to react to this conquest. The white man has killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all, they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. British rule 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the sea loses his religion. All the misery in the world is due to women. The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, Your Honor, but I am honest. Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. Still, the British invented other methods, which gave them more profits. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India. A good idea. The East India Company's law began to cripple Indian industries. Inevitable famines followed between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. The British policies ruined the expert artisans and their business. Rajaram Mohan Roy, 1772 to 1833. Ram Mohan Roy was a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great. And we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruined us. He told his wife Uma, cows are different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. He crossed the seas and went to England to see what made British powerful. There he told them, we accept you as rulers and you must accept us as subjects. But you remember, the responsibility of a ruler owes to his subject. He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. Oppression from 1765 to 1835. But the British continued to oppress Indians in 1818. They had passed Regulation 3rd under it. An Indian could be jailed without the trial in court. All-time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. Governor General Bentinck reported back bleaching the plains of India. The British prospered on companies' loot while Indian industries began to die. Dissatisfaction, 1835 to 1856. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, Englishman named Manquillet suggested a change. We should teach the natives through the English language. I agree. English education produced clerks to whom British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. By 1856, the British had conquered the whole India. They cared little about the needs of Indians. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. The Sparks, 1855 to 57. Taxes continued to ruin peasants in Bengal. The Santhalas, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Discontent was brewing in East India Company's army too. द व्हाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेसन्स टू लिव इन सर्वेंट्स व्हाइल वी गेट पिटिशंस एंड स्लो प्रमोशंस द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी व्हिच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवॉल्टेड दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स humiliated and put in irons. Few Englishmen had cared to understand Indians, Indian customs, or the people's mind. Oh, proud Brahmin soldiers, do you know the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of the cow and pigs? What? The white man has deceived us too. Soon, chapatis were sent from village to tell people that the emperor would want their service. Yes, all my village men will be ready. Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers, dead to the foreigner. The masses gave all the help and shelter to the patriots. The revolt of 1857. Then there was a violent outbreak at Meerut. The Sepoy marched to Delhi. Long live our Emperor Bahadur Shah. The rebellion spread wider. Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. The white man's rule must end. Yes, we will help you. The fight for freedom from 1857. Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. They joined the upsurge against the foreigner. Popular leaders like Maulavi Ahmedullah of Faizabad told the people, Rise, brothers, rise. The Angrez is ruining our land. The people rose everywhere in Bareilly, Kanpur and Allahabad. Azimullah Khan told Tatya Tope, We should have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence. 80-year-old Kumar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. Mother Ganga, this is my last offering to you. The patriots pronounced upon the British and fought pitched battles all over North India. तो बच्चों ये था हमारा पूरा लेसन द ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट. अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इसकी इस पूरे के पूरे लेसन की समरी बताऊंगी. पहले हम इंग्लिश में जानेंगे और फिर मैं आपको प्रॉपरली हिंदी में समझाऊंगी, ठीक है. और उसके बाद नीचे गए दिए गए कुछ सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन चेक और वर्किंग विद द टेक्स्ट और वर्किंग विद लैंग्वेज और बाकी के जो सारे क्वेश्चनियर्स है उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो शुरू करते हैं 1757 से लेके 1849 तक के समरी जानने में. सो इन इंडिया ऑफ 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन द स्ट्रॉन्गर पोजिशन. मतलब कि होता यूं है कि इंग्लैंड की एक कंपनी होती है ब्रिटेन की, इंग्लैंड को वैसे ब्रिटेन भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक वो कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में, ठीक है. और कंपेयर टू इंडियन प्रिंसेस दे हैव सुपीरियर वेपन्स. मतलब कि क्या होता है, हमारे जो इंडियन इंडियन जो प्रिंस होते हैं यानी कि राजकुमार और जो राजा महाराजा होते हैं उनके पास बहुत ही पुराने जमाने के वेपन्स होते हैं, जैसे कि तलवार हो गई यानी कि बाकी सारे जो मतलब छोटे छोटे हथियार हो गए, बो एंड एरो वगैरह वगैरह होते हैं. बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है ना बच्चों, उनके पास उस जमाने के एडवांस आर्म्स एंड एम्युनिशंस होते हैं. आर्म्स एंड एम्युनिशन मतलब कि उनके पास बंदूकें होती हैं, बड़ी बड़ी तोहफे होती हैं और वो लोग यूज कर रहे होते हैं इंडियन के इंडिया के जो राजा होते हैं वो उन पे. पर उनका वही एक तरीका नहीं होता बस शस्त्र लेके वो इंडियन राजा जो है उनको हराना, बस उनके पास नहीं था, उनके पास और भी खिलौनी, उनके पास तरकीबें थी, चालें थी. So beside Indian princes were short-sighted in their approach to the events of the time, Indian princes were fighting with each other. मतलब हमें इंडिया में हमारे हमारे जो छोटे छोटे प्रिंस थे, छोटे छोटे महाराजा जो थे उनका बड़ा बड़ा साम्राज्य, बड़ा राज्य उनके पास नहीं होता था, तो वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे साम्राज्य हासिल करने के लिए या फिर बदला लेने के लिए. और इसी का फायदा ब्रिटिश लोग उठाते हैं, वो क्या करते हैं इंडिया में आते हैं और एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध भड़काते हैं और भड़काते और भड़काने के बाद फिर राजा कहते हैं कि मुझे उनके साथ युद्ध करना है. बट क्योंकि उस राजा के पास कम हथियार होते थे, कम उसके पास सेना होती थी, तो ब्रिटिश उनको कहते थे कि हम आपको ऑफर करते हैं हमारी नई नई जो हमारी नए नए वेपन्स है वो हम आप लोगों को हेल्प करते हैं लड़ने में, और हम आपकी मदद करेंगे। बट राजा जो थे हमारे इंडिया के, वो उनके पास शॉर्ट साइटेड थे, वो मतलब कि वो दूर दृष्टि उनके पास नहीं होती थी, वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, वो बस अभी के बारे में सोचते थे, प्रेजेंट के बारे में सोचते थे और युद्ध किया करते थे, है ना। हम अपने अपने ही साथी भाइयों के साथ युद्ध किया करते थे और इसी का फायदा ब्रिटिश उठाते थे। और वो क्या करते थे, दे ऑफन सॉट द हेल्प ऑफ द कंपनी टू डिफीट द प्रिंस। दिस वर्क इन फेवर ऑफ द कंपनी, इट कुड इजिली इजिली सबड्यू दीज प्रिंस वन आफ्टर द अदर। हाउएवर द ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश, ही डाइड इन द बैटल फील्ड फाइटिंग इन फाइटिंग द इंग्लिश। मतलब कि उस जमाने में जब सारे राजा और जो राजकुमार थे वो बस अभी के बारे में सोचते थे, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचते थे। एक राजा ऐसा था, एक जो सम्राट थे इंडिया के, जिनका नाम था टीपू सुल्तान, वो थे मैसूर के राजा थे। वो बस क्या करते थे, दूर दृष्टि उन्हीं के पास थी, तो वो सोचा करते थे कि अरे अगर हमने इस प्रकार से ब्रिटिशों का साथ दिया, अगर हम अपने अपने बीच में लड़ाई लड़ने लगे, तो वो वक्त दूर नहीं जब ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंग्लिश कंपनी है, वो हम पर राज करेगी, है ना। तो फिर क्या होता है उसके बाद, इतना शूरवीर और इतना राजा होशियार होने के बावजूद भी वो ब्रिटिशों के अगेंस्ट वो राजा हार जाते हैं, क्योंकि मतलब उसका साफ होता है, राजा जो टीपू सुल्तान जो है वो बस प्रेजेंट के बारे में सोचा करते थे, और फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में ही नहीं बल्कि वो फ्यूचर के बारे में भी सोचा करते थे, बट उनका साथ देने वाला कोई नहीं था और उनके पास जो आर्म्स एंड एमिनेशन थे वो पुराने जमाने के थे। सो द जनरल रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज नॉट द सेम इन एवरीवेयर इन इंडिया। देर वर सम अदर्स हु थैंक्ड ब्रिटिश फॉर अशरिंग इन द ईरा ऑफ पीस, अदर्स बी मोन्ड दैट कंट्री वॉज सब्जेक्टेड टू द फॉरेन रूल। मतलब कि ब्रिटिशों का जो राज्य था वो उसके बारे में एक ही तरह के विचार नहीं थे लोगों के मन में, हर हर कोई अपने अपने तरीके से ब्रिटिशों के राज के बारे में बातें करता था। फॉर एग्जाम्पल, वो प्रजा जो हमेशा से अपने राजाओं के बारे में युद्ध देखा करती थी, जिनको युद्ध के बारे में, युद्ध के जो आफ्टर इफेक्ट्स है जो उनको झेलने पड़ते थे, तो वो लोग क्या कहा करते थे कि हाँ भाई ब्रिटिश आ गए तो अच्छी बात होगी, क्यों, क्योंकि हमारे दो राजाओं के बीच लड़ाई झगड़ा तो बंद हुआ, हम लोग मतलब हम लोग जो है वो अच्छे तरह से रहने का हमें मौका तो मिला विदाउट वॉर। बट कुछ और लोग थे वो सोचते थे कि अरे फिर तो क्या हुआ, हमारे राजा अगर लड़ते झगड़ते भी तो थे, पर हम अपने अपने ही लोग हम पे राज करते थे, पर अब क्या हुआ, अब हमारे ऊपर तो भाई फॉरेन रूल आ गया, हमारे ऊपर जो थे वो ब्रिटिशर्स यानी कि बाहर वाले लोग आकर हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये कंटेक्स्ट था फ्रॉम 1757 टू 1849 की, ये समरी थी। अब आगे चलते हैं 1765 टू 1836, यानी कि 1765 से लेके 1836 तक के अब हम जानेंगे इस इरा में क्या हुआ था। सो द सोशल फैब्रिक वाज इन द बैड शेप, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड एब्सर्ड प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। मतलब कि जो सोशल फैब्रिक यानी कि जो समाज की जो गतिविधियां थी वो बहुत ही बुरी बुरी कंडीशन में थी, बहुत ही बुरी उनकी शेप थी। और ऐसा क्यों होता था कि मोस्ट ऑफ द रिलीजियस लीडर्स जो थे, जो धर्म का प्रचार करते थे, उनके मन में बहुत ज्यादा वो बाकी लोगों के, बाकी जो समाज था उनके मन में वो गलत चीजें फैलाते थे। अब ऐसा नहीं था कि शुरुआत में ही धर्मों में ऐसी चीजें सिखाई गई थी, ऐसा तो नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी। आप जानते होंगे हमारी भारत की बहुत ही पवित्र नदी, किसको माना जाता है बच्चों, भारत की बहुत ही पवित्र नदी को माना जाता है, गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है ना। तो अगर हम यूपी में या फिर बिहार में, अगर जहां पे गंगा नदी एंड होती है या फिर एंड होने को आती है, या फिर बीच में अगर हम देखेंगे, तो गंगा नदी बहुत ही पल्यूटेड है, बहुत ही गंदी चीजें उसमें पड़ी हुई है, लोग कुछ भी फेंक देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी गंगा नदी में जाती है। पर अगर हम गंगा की शुरुआत में, जहां से गंगा नदी का उगम होता है, यानी कि गंगोत्री नाम की एक हिमालय में एक जगह है जहां से गंगा नदी का उगम होता है, हम लोग अगर वहां अगर जाके देखें तो गंगा नदी उतनी ही पवित्र है जितनी कि हमारे पुराणों में जिस जैसे डिस्क्राइब किया था, जैसे कि बताया गया था उस वजह से। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी धर्म जो है, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, वो शुरुआत में वो चीजें जहां से शुरू हुई थी, वो लोग जो लोग प्रीचर्स थे, धर्म गुरु थे, वो तो अपनी बातें बहुत ही साफ तरीके से रखा करते थे। पर होता यूं था कि जिस जैसे जैसे वक्त बीतता जाता था, जैसे जैसे टाइम जाता था, उस वक्त बाकी के जो लोग थे, बाकी के जो एलिमेंट्स होते थे, वो अपनी अपनी चीजें उन धर्मों के बीच में लाते थे। और इस पूरे इसमें होता क्या था कि जो एक्चुअल जो धर्म की जो प्रीचिंग्स है वो कहीं ना कहीं खोती जाती थी। तो इसी प्रकार से हिंदू धर्म के बारे में भी हुआ था, मोस्ट ऑफ द जो रिलीजियस लीडर्स थे वो गंदी बातें फैलाते थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब कि कोई एक ऐसी कास्ट जिसके बारे में, जिसको छूते नहीं, अछूत जिसको कहा जाता है, वैसे वैसे किसी भी नीचे जाति के स्तर के लोगों के साथ उस प्रकार का व्यवहार करना, या फिर चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, जो कि बाल विवाह अभी हमारे कायदे कानूनों में, वो अभी जिसको बहुत ही इलीगल यानी कि बहुत ही गलत माना जाता है, चाइल्ड मैरिज यानी कि बच्चों की शादी कर देना, मतलब कि लड़की जो होती है उसकी 18 साल से पहले शादी करना और लड़कों की 21 साल से पहले शादी करना, इन तरह के शादियों को कहा जाता है चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह। तो इस प्रकार की चीजें फैलाई जाती थी, मतलब कि चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, अनटचेबिलिटी हुआ करती थी। और एक प्रथा होती थी हमारे हिंदू धर्मों में जिसको कहा जाता है सती प्रथा, यानी कि जब भी हस्बैंड यानी कि जब भी पति मर जाते हैं तब उसकी जो फायर होती है, उसकी जो चिता होती है, उसमें जबरदस्ती उसकी पत्नी को ढकेल दिया जाता था। और अगर वो जबरदस्ती ना भी हो तो भी वो जो औरत थी वो खुद चली जाती थी सती, उसमें मतलब खुद जल जाती थी। तो ये भी एक प्रकार की गंदी प्रैक्टिस थी जो हमारे हिंदू धर्मों में, हमारे भारत में हुआ करती थी। तो इन सारी चीजें का सहारा लेते लिया करते थे ब्रिटिश, भड़काने में या फिर आप कह सकते हो गलत तरीके से इन सब चीजों का प्रयास करते थे। सो इन ट्रूथ इंडियंस हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कि वो ब्रिटिश की, और भी ब्रिटिशों की ये थी कि वो रेशियल सुपीरियरिटी को बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते थे। रेशियल सुपीरियरिटी मतलब कि आपकी जो स्किन है, आपके शरीर का रंग जो है, उसके बारे में ब्रिटिश लोग माना करते थे कि जो लोग गोरे होते हैं वो बहुत ही सबसे ज्यादा होशियार, या फिर सबसे ज्यादा वो लोग, उनको मान सम्मान मिलता था। पर तब जब भी बात अपने स्किन जिनकी मतलब थोड़ी सी सावली होती थी, उनको ब्रिटिश लोग जो है वो नीचा स्तर दिखाते थे। और इसी प्रकार मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो थे वो सावले रंग के ही थे, कृष्ण वर्णीय जिनको हम कहते हैं, उसी प्रकार के थे। और जाहिर सी बात है, और क्योंकि यहाँ का, इंडिया का हमारा जो क्लाइमेट है वो उस प्रकार से है जिसके वजह से हमारी स्किन उस रंग की, मतलब थोड़ी सी सावली हो जाती है। पर ब्रिटिश लोग क्या कहा करते थे कि जो लोग सावले होते थे वो उनकी उतनी बौद्धिक उनकी क्षमता जो है वो उतनी नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत सोच है। क्योंकि हम अगर देखें साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही फेमस लीडर हैं नेल्सन मंडेला, और भी बहुत ज्यादा लोग हैं जिनका रंग सांवला है, जिन पर उनके जो विचार हैं वो बहुत ही ज्यादा उच्च दर्जे के हैं, यानी कि किसी भी गोरे लोगों के पास भी इतने विचार नहीं होंगे, उतने विचार सांवले लोगों के पास भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान के स्किन कलर से उस इंसान का अच्छा या बुरा होना हम लोग तय नहीं कर सकते, पर ब्रिटिश लोग जो थे वो यही चीज करते थे। और इस वजह से, और इंडियंस जो है हमारे, वो उनको लगता था कि क्योंकि हमारी स्किन भाई तो सांवली है तो हम तो किसी भी चीज के लायक ही नहीं है, हमारे पास उतनी, हम लोग शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकते, या फिर हम खुद के ऊपर राज्य करने के भी काबिल नहीं है। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, मतलब कि खुद के ऊपर भरोसा, खुद का मान सम्मान इंडियंस लोग, हम इंडियंस ने खो चुका था ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो ब्रिटिश कॉन डेम द फार्मर्स एंड आर्टिसंस वर द वर्स्ट हिट, मतलब कि ब्रिटिश लोग क्या किया करते थे, अपने ब्रिटेन में जो, अपने राज्य में जो चीजें बनी गई हैं वो लोग वो यहाँ पे लाया करते थे। और इस वजह से होता क्या था कि हमारे भारत में जो चीजें पलती बढ़ती थी उनका सेवन जो है वो लोग कम किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था भाई बाहर से आ गई चीज है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। और इसका जो इफेक्ट था वो छोटे छोटे इंडिया में जो आर्टिसन थे, यानी कि छोटे कलाकार जो थे, या फिर हमारे फार्मर्स हो गए, यानी कि हमारे जो खेत में जो हमारे किसान होते हैं, उनको इस चीज का बहुत ही ज्यादा गंदा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। हैवी टैक्सेस रुइन्ड द फार्मर्स, मतलब कि बहुत ही बड़े और हैवी ज्यादा टैक्स वसूला करते थे, है ना? तो इस वजह से हमारे फार्मर्स जो हैं वो और ज्यादा पुअर होते चले गए। इनिशियली मैं बता दूं बच्चों आपको, हमारे प्यारे भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे लोग, मतलब पूरी दुनिया जो है वो कहा करती थी। और ऐसा एक मेटाफर आप कह सकते हैं, ऐसी उक्ति होती थी कि हमारे भारत में जो धुआं जो आता था, मतलब कि अगर आप चूल्हा जलाए और वो धुआं जो आता था वो भी सोने का धुआं कहा करते थे लोग। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोस्पेरिटी और इतना ज्यादा हमारा प्यारा भारत जो है वो रिच हुआ करता था, इतने ज्यादा हम लोग पैसे वाले हुआ करते थे, हमारे पूरी पूरी पूरा देश। पर पर क्योंकि ब्रिटिशों के आने की वजह से ब्रिटिश लोग हैवी टैक्स वसूल रहे होते हैं हमारे फार्मर्स के फार्मर्स से, तो इस वजह से मैक्सिमम बेनिफिट जो होता था वो ब्रिटिश लोगों को जाया करता था, और इसी वजह से हमारे भारत में लोग सफर करने लगे बुरी तरह की पूरी तरीके से। सो द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड बिकेम टैक्स फ्री। तो होता यूँ था कि ब्रिटिश लोगों की एक बहुत ही और एक गंदी सी चाल मैं कहूंगी वो होती थी कि जब भी वो लोग ब्रिटेन से कोई चीज यहाँ पे लाया करते थे तो उस चीज पे वो लोग टैक्स नहीं लगाया करते थे, है ना। पर जब भी हमारी चीज जब ब्रिटिश में ब्रिटेन में जाती थी तो उस पे बहुत ज्यादा टैक्स यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते थे वो। इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि वो जो चीज है वो बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी, तो इस वजह से इंडियन इंडियन लोगों के जो गुड्स होते थे बाहर के देशों में वो लोग खरीदते नहीं थे बाहर वाली कंट्रीज में। बट क्योंकि इंडिया में बाहर के जो चीजें आती थी वो लोग बहुत ही इजीली खरीदा करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा सस्ती हुआ करती थी। अब आप मैं आप इसको आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी कि एक छोटा सा कपड़ा भी अगर इंडिया में अगर बेचना चाहते थे लोग तो वो हाथ से यूज करते थे, मतलब कि आप जानिए कि चरखा लोग यूज करके बनाया करते थे कपड़े। पर ब्रिटिश ब्रिटेन में जो है वो लोग मशीनों के थ्रू मतलब मशीन यूज करके वो कपड़े बनाते थे, तो जाहिर सी बात है बहुत ही जल्दी वो चीजें बन जाती थी, बहुत कम समय लगता था। पर इंडिया में क्योंकि ज्यादा वक्त लगने के कारण वो चीजें महंगी हुआ करती थी, है ना। और इसी का रिजल्ट था कि हमारे भारत में जो बनाई गई जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा महंगी बिका करती थी, और ब्रिटिशर्स की जो लाई चीज है वो बहुत ही सस्ती बिका करती थी। तो इसी वजह से जो है इंडियंस लोग बहुत ज्यादा इंडियन जो फार्मर्स थे इंडियन के जो इंडियन जो कपड़े जो लोग बनाया करते थे वो लोग सफर करने लगे। अब आते हैं हमारे पड़ाव पे, राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानते थे जानेंगे अभी। तो राजा राम मोहन रॉय जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस जिनको कहा जाता है हमारे हमारे मॉडर्न इंडिया के बहुत ही फेमस फिलोसोफर्स में एक एक में माना जाता है इनको। तो अभी उनके बारे में बात करते हैं। ये वक्त था 1772 से लेके 1833 तक। तो राजा राम मोहन के बारे में अगर मैं आपको बताने जाऊं तो राजा ये उनको पदवी दी गई थी, उनको एक टाइटल दिया गया था ब्रिटिशर्स ने, और राम मोहन रॉय उनका नाम था। तो राम मोहन रॉय यूज टू अंडरस्टूड वॉट वॉज रॉन्ग विद द कंट्री, ही ट्राइड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, मतलब कि वो भारत को अच्छे तरह से समझ गए थे, ब्रिटिशरों की जो चालें थी वो समझ रहे थे, पर उनके पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो वो क्या करते थे कि उनको क्योंकि ये गंदी चीजों के बारे में गंदी जो प्रैक्टिसेस थे उनके बारे में पता था, तो वो लोग वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे कि हम इंडियंस को सुधारा जाए, उनको क्या सही है क्या गलत है इन सब के बारे में नॉलेज दी जाए। ही टॉट पीपल दैट द मेन पर्सपेक्ट ऑफ रिलीजन वर द सेम, मतलब कि वो कहना चाहते थे लोगों को कि भले ही आप हिंदू हो भले ही आप मुसलमान हो या फिर आप ईसाई हो, एक जो रिलीजन होता है हमारा वो इंसान को बस एक अच्छा एक मानव को अच्छा इंसान बनाने में वो रिलीजन होता था होता है, और ना कि किसी और चीज की वजह से। तो भले ही आप किसी भी धर्म के हो आप किसी भी जाति के हो, आपने बस अच्छी चीजें जो है अपनी रिलीजन में जो आपको कष्ट नहीं देती वही चीजें आपने अपनानी चाहिए। पर हमारे इंडिया में तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही होता था। हमारे भारत में लोग गंदी चीजों को भी मतलब अपनाते थे, जो कि जैसे कि सती प्रथा मैंने आपको कहा, अनटचेबिलिटी, इन ये सारी चीजें लोग हमारे में प्रैक्टिस करते थे। और ही 1757 टू 1849 ही एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द नॉलेज, ही वेंट टू इंग्लैंड, मतलब कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो इंग्लैंड में चले गए, ब्रिटेन में चले गए, और वहां पे उन्होंने देखा कि किस वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुए हैं, और क्यों किस क्या रीजन है कि हमारे इंडिया में वो आज राज कर रहे हैं और हम इंडियंस ही अपने ऊपर राज करने में काबिल क्यों नहीं बचे। तो ये सारी चीजें वो ढूंढने के लिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो चले गए वहां पे, कहाँ चले गए वो इंग्लैंड में। तो ही रिमाइंडेड द ब्रिटिश दैट रूलर्स टू हैड द ड्यूटी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर इन इंडिया, द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, मतलब कि वो क्या करते हैं वो अपने जमाने में ब्रिटेन में जाते हैं और वो ब्रिटिशर्स लोगों को ये खुलेआम कहने की जुर्रत भी करते हैं कि माना कि आप लोग हम पे रूल कर रहे हैं, माना कि आप हमें हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, पर एक शासक की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली अपने जो सब्जेक्ट्स है यानी कि अपने जो अपना राज्य है उसमें जो लोग हैं उनके ऊपर अच्छे से राज्य करे। पर क्योंकि ब्रिटिशर्स के राज्य में बस इंडियंस जो है हमारे भारतीय वो बस सफर ही करते थे, यानी कि बस वो उनको मतलब कि उनको कुछ अच्छा, उनके साथ कुछ नहीं होता था, बस उनको हाल अपेष्टा होती थी उनकी। तो इसी वजह से राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि आप लोगों को भी शासन करना आना चाहिए। एक अच्छे शासक की जो जिम्मेदारी यही होती है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को, यानी कि अपनी जो प्रजा है उनको खुश रखे, और आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो इसी दौरान वो लोग क्या, हमारे राजा राम मोहन रॉय क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, और ब्रिटिशर्स को इस न्यूज़पेपर पे बहुत ज्यादा उनपे शक आता आता है, मतलब कि शायद वो नेशनैलिटी के बारे में बातें करना शुरू कर दें। इसी वजह से वो उनका न्यूज़पेपर बंद करते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताऊंगी इस बारे में कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो सती प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे, और उन्होंने ही मतलब ब्रिटिशर्स को है वो उन्होंने बहुत ज्यादा सहायता की थी ताकि ये जो चीज है सती प्रथा वो बंद हो जाए इस वजह से। और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपने लाइफ में उन्होंने एक इंसिडेंट देखा था, और वो इंसिडेंट ये था कि उनके जो भाई की पत्नी थी जिनको वो बिल्कुल माँ समान मानते थे, वो एक बार उन्होंने देखा था कि उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी वो सती चली गई थी, और इस चीज का उनको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था, उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वो उनको अपनी माँ समान मानते थे। तो अगले क्लास में बच्चों हम बाकी के पुराने बचे हुए लेसन का डिस्कशन करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर्स है उनके भी बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।